أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله ابن الزهراء وآيته الكبرى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صلوات حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے سید علی جاہ جعفر علی صاحب کی بیٹی حسنین عباس شازیہ ہارون اس کے علاوہ ایک مومن نے دعا کی التماس کی ہے اور بعض دوسرے مومنین نے بھی دعا کی التماس کی ہے تمام مرضہ اسلام کی صحت یابی کے لیے اور تمام دعاؤں کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات حضرات گرامی اور عزاداران فاطمی جو سلسلہ گفتگو ہم نے شروع کیا تھا آج اس کی آخری گفتگو ہے اور ہم نے ان تمام مجالس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے 75 دن میں یا 95 دن میں وہ کام کیا کہ یہ 75 دن یا 95 دن تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے نہ یہ کہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے بلکہ حضرت بقیۃ اللہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے بھی فرمایا کہ فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی کی سیرت میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے اور کل آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہوئے یہ باتیں بیان کیں اور ابھی مزید انہی چند نکات کو بیان کرتے ہوئے آج موضوع تمام کر دوں گا انشاءاللہ کل بیان کیا گیا کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان امام معصوم کی ہمراہی تک چلا جائے اور انسان اس سے آگے جا بھی نہیں سکتا۔ اسی کے ضمن میں ہم نے یہ بات کہی کہ اہل بیت علیہم السلام سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے، یعنی اپنی ظرفیت کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے بلکہ ان کی عطا کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اور پھر درمیان میں یہ بات بھی آئی، اسی پر ایک بات اور بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کہ حتیٰ اساتید نے فرمایا کہ اہل بیت سے جنت بھی نہ مانگو کیونکہ جنت بھی کم ہے۔ کہنے لگے اگر مانگنا ہی ہے تو یہ کہو کہ مولا جنت میں آپ کے ساتھ جانا ہے، بی بی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، بی بی جنت میں بھی آپ ہی کی غلامی چاہیے، اور اس سے بڑا شرف انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور درمیان میں یہ بات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ ممکن ہے کہ انسان جنت میں جائے مگر اہل بیت علیہم السلام کا دیدار نصیب نہ ہو، اور انسان کے لیے بہت ہی زیادہ سخت مرحلہ ہوگا کہ انسان جنت میں جائے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار نصیب نہ ہو، انسان جنت میں جائے مگر امام حسین علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہو۔ ہمیں کیا معلوم جنت کیا ہے؟ وہ جنت کے جو سید الشہداء علیہ السلام کے نور سے بنی ہو، یہ روایات بیان کر رہا ہوں، وہ سید الشہداء، وہ اہل بیت جن کے نور کی ایک جھلک جنت ہو، اور ہم جنت میں جانے کے بعد ان کا دیدار نہ کر سکیں، یہ ہمارے لیے سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ مثلا بالکل سامنے کی بات کروں کہ اگر آپ حضرات کو کوئی یہ کہے کہ حضرت بقیۃ اللہ عجل اللہ فرجہ الشریف یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ حضرت یہاں ہیں تشریف فرما ہیں مگر آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو کتنا زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ اسی مسجد میں حضرت تشریف فرما ہیں، تشریف رکھتے ہیں، لیکن ہائے ہم گناہگاروں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے سخت ہوگا کہ انسان جنت میں ہو اور جنت میں اہل بیت کی ہمراہی میں نہ ہو، انسان جنت میں ہو اور جنت میں اہل بیت علیہم السلام کا دیدار نہ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے وہ جنت جو اہل بیت علیہم السلام کا باطن ہے، جنت میں اہل بیت علیہم السلام کا ظاہر نہیں ہوگا، جنت میں اہل بیت علیہم السلام کا باطن ہوگا۔ اور اگر انسان ایک مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کا باطن دیکھ لے اس کے بغیر ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ لوگ صرف اہل بیت علیہم السلام کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے کردار کے دیوانے ہو جاتے تھے، اگر انسان ان کا باطن دیکھ لے تو انسان رہ نہیں سکتا ان کے بغیر۔ اور مثال سے تاریخ سے ایک بات چھوٹی سی وعدے کروں، آپ حضرات نے ہزار مرتبہ سنی ہوگی، یہ بات اشارہ کر رہا ہوں، شاید اس زاویے سے کبھی نہ سنی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زنان مصر کے درمیان سے گزارا گیا اور زنان مصر کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا گیا، ایک میوہ دیا گیا اور چاقو دیا گیا، اور کہا گیا کہ جب یوسف درمیان سے گزریں تو اپنے چاقو سے پھلوں کو کاٹ لیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام زنان مصر کے درمیان سے گزرے تو کیا ہوا، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لیں۔ ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ آخر کیوں انگلیاں کاٹ لیں؟ ایک سوال یہاں پہ کروں گا، آخر ایسا کیا دیکھا انہوں نے جناب یوسف میں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں؟ یہ وہی یوسف تھے جو ان کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے، یہ وہی یوسف تھے جو ان کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ کل تو کسی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا، کل تو کسی نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹیں، لیکن آج یوسف ایک لہجے کے لیے ان کے سامنے سے صرف گزرے ہیں تو انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تو علماء نے بتایا اس جگہ پر یہ وہ خاص موقع تھا کہ جہاں پر جناب یوسف علی نبینا وآلہ السلام نے اپنا ظاہر نہیں اپنا باطن ظاہر کیا تھا۔ जब यूसुफ का बातिन देख कर अपने ऊपर जब्त न कर सकें ये जना ने मिस्र और फलों के बजाय अपना हाथ काट लिया, तो जब फ़ख्र यूसुफ सामने आ जाए और फ़ख्र यूसुफ अपना बातिन दिखा दे तो कमाल ही क्या है। और इंसान के लिए सख्त है कि इंसान जन्नत में जाने के बाद अहले बैत के बातिन का एक मर्तबा मुशाहिदा करे। इंसान के लिए जहमत के लिए काफ़ी है कि मैं इसी जन्नत में हूँ और इसी जन्नत में सैयदुश्शोहदा का बातिन है, इसी जन्नत में जनाब सैयदा का बातिन है, मगर हाय मेरे गुनाह माने बन गए और मैं उनका मुशाहिदा नहीं कर पा रहा। तो बहरहाल सिर्फ ये बयान ये करना चाह रहा हूँ, यकीन ये दिलाना चाह रहा हूँ कि अहले बैत की हमराही के बहुत सारे दराजात हैं। अगर हम एक मरहले पर हैं तो कोशिश करके अगले मरहले पर जा सकते हैं, उसके बाद कोशिश करके और अगले मरहले पर जा सकते हैं, यहाँ तक कि उस मरहले पर आ सकते हैं कि इनका जाहिर और इनका बातिन कोई फ़र्क नहीं करता, इनका जाहिर भी हमारे लिए बातिन जैसा होगा। बहरहाल ये वो मराहल हैं कि जिसकी तरफ इंसान को तवज्जो रखनी चाहिए। कल इसी की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि मूसा हमारे बंदे से जाकर सीखो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज्र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहां पर पहुंचे? कुरान मजीद की ताबीर के मुताबिक मजमाए बहरेन, मजमाए बहरेन यानी वो जगह जहां पर दो दरिया मिलते हैं। अब यहां पर उलमा ने तफासीर में लिखा कि दो दरिया से क्या मुराद हैं, बाज़ ने कहा मेडिटेरियन सी, बाज़ ने कुछ। यहाँ तक कि उलमा ने कहा ये दरिया ज़ाहिरी दरिया नहीं है, बल्कि दो दरिया से मुराद एक ज़ाहिर का दरिया है और एक बातिन का दरिया है। क्या मतलब? जनाब यूसुफ ज़ाहिर के नुमाइंदे हैं और जनाब खिज़र बातिन के नुमाइंदे हैं, जहाँ पर ज़ाहिर और बातिन दोनों मिल जाए वही उनका नुक्ता मुलाकात था। ज़ाहिर और बातिन मिला क्योंकि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर के नुमाइंदे हैं, ज़ाहिरी शरीयत के नुमाइंदे हैं, और जनाब खिज्र अलैहिस्सलाम बातिन के नुमाइंदे हैं। बहरहाल इसको एक जगह बयान करूँगा अभी आज ही की मजलिस में कि जो कुछ बयान करना है आज ही बयान करना है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा। एक सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुलाकात हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही आजिज़ाना इल्तिजा की कि क्या मैं आपकी शागिर्दी कर सकता हूँ, हल अत्तबिउ का, क्या मैं आपकी शागिर्दी कर सकता हूँ? तो जनाब खिज्र अलैहिस्सलाम ने दो टोक कहा, अगर शागिर्दी करनी है फ़ला तसअलनी अन शय, किसी चीज़ के बारे में पूछिएगा नहीं, किसी चीज़ के भी बारे में मुझसे पूछिएगा नहीं। अगर आप मुझे हुज्जत खुदा समझते हैं और खुदा का वली समझते हैं तो मुझे मालूम है कि आपके साथ क्या करना है, मुझे मालूम है परवरदिगार आलम का हुक्म क्या है। इसीलिए कहते हैं इन तक पहुंचने से पहले जितनी भी अक्ल इस्तेमाल करनी है कीजिए, लेकिन जब इन तक पहुंच जाएं अब अक्ल के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। अब वही होगा जो ये कहते हैं, कल का जुमला याद हो, जहां पर अक्ल काम करना छोड़ देती है वहां से वही का सिलसिला शुरू होता है। आज यहाँ पर एक नई लहर दौड़ी है, अलबत्ता पूरी दुनिया में एक नई लहर सेकुलरिज्म की लहर दौड़ी है, उसकी बुनियाद ह्यूमनिज्म है, इंसान महवरियत। कहते हैं कि हमें वही की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इस्लाम दीन इस्लाम इंसान महवर नहीं है, दीन इस्लाम अक्ल महवर नहीं है, दीन इस्लाम वली महवर है। दीन इस्लाम अक्ल के गिर्द नहीं घूमता, वाजे करूंगा अक्ल के गिर्द नहीं घूमता इससे क्या मुराद है। दीन इस्लाम अक्ल के गिर्द नहीं घूमता, दीन इस्लाम वली खुदा के गिर्द घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात से कोई सुए इस्तेफादा ना करे, कि दीन इस्लाम के अहकाम में अक्ल नहीं है, कि दीन इस्लाम के अहकाम अकलाना नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दीन इस्लाम के अहकाम अकलाना नहीं है, दीन इस्लाम के अहकाम ऐने अकलाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर हुक्म को अपनी अक्ल के जरिए से समझ लें। दीन इस्लाम का हर हुक्म आकलाना है, मुमकिन है तुम ना समझ पाओ, हम जानते हो तुम्हारी अक्ल ना समझ पा रही हो। छोटी सी मिसाल से बात वादे करूं, अगर किसी से पूछा जाए कि परवरदिगार आलम ने फजर की नमाज दो रकत क्यों रखी, तो जवाब ये देते हैं, उमूमन जवाब ये दिया जाता है कि परवरदिगार आलम को मालूम था कि इंसान के लिए गिरा गुजरेगा, जब सोकर उठेगा ख्वाब गफलत से बेदार होगा, मुश्किल होगा वुजू करे और एक लंबी सी नमाज पढ़े, तो परवरदिगार आलम ने सोचा कि चलिए दो ही रकत नमाज रख देते हैं। اگر واقعاً واقعاً ہماری عقل نے در کر لیا کہ پروردگار عالم نے فجر کی نماز دو رکعت اس لیے رکھی ہے کہ انسان کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، تو مجھے بتائیے پھر نماز شب 11 رکعت کیوں ہیں؟ اگر فجر کی نماز اس لیے 2 رکعت تھی کہ زحمت نہ ہو، پھر نماز شب 11 رکعت کیوں ہیں؟ تو یہ کہیے، جس خدا نے 2 رکعت پڑھنے کو کہا ہے، اسی خدا نے 11 رکعت پڑھنے کو کہا ہے؟ ہمیں کیا معلوم 2 رکعت کیوں پڑھنی ہے اور 11 رکعت کیوں پڑھنی ہے؟ خدا نے حکم دے دیا، آمنا صدقنا، ہمارے امام نے کہہ دیا ایسے کرنا ہے تو آمنا صدقنا. انہیں پتا ہے ہماری مصلحت کس میں ہے، انہیں پتا ہے ہمارا مفسدہ کس میں ہے. وہ بشر المخبتین، یہ لفظ یہاں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ بات کہتے کے ساتھ ہی جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. وہ بشر المخبتین، اے پیغمبر ان اخبات کرنے والوں کو بشارت دے دو. اخبات الف خے بے الف تین، خفت سے اخبات. اے پیغمبر ان اخبات کرنے والوں کو بشارت دے دو. علماء نے بتایا کہ اخبات سے کیا مراد ہے، ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ اونٹ کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جب اونٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے سر میں کیڑے ہیں تو وہ صحرا میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، گویا سجدے میں چلا جاتا ہے. پروردگار عالم نے ایک پرندہ بنایا ہے، اس پرندے کی غذا اونٹ کے سر میں پڑنے والے یہ کیڑے ہیں. جب اونٹ اپنا سر جھکا دیتا ہے، وہ پرندہ آتا ہے، اپنی چھوٹی سی چونچ سے اونٹ کے سر کا آپریشن کرتا ہے، وہ کیڑے کھا لیتا ہے، اونٹ صحتیاب ہو جاتا ہے، دوبارہ چلا جاتا ہے. کہتے ہیں اسی منزل کو اخبات کہتے ہیں. تم اپنا سر ہمارے سامنے جھکا دو، ہمیں معلوم ہے تمہاری مصلحت کس میں ہے. معلوم ہے تمہارے ساتھ کب کیا کرنا ہے، تمہاری مصلحت کس میں ہے، تمہارا مفسدہ کس میں ہے. یبن آدم اطعنی، اے آدم کے بیٹے میری اطاعت کر، حدیث قدسی، ولا تعلمنی ما یصلحک، مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری مصلحت کس میں ہے. حدیث قدسی ہے، مجھے نہیں بتاؤ کہ تمہاری مصلحت کس میں ہے. بقول ہمارے استاد، تم بندگی کرو، خدا کو خدائی کرنا آتی ہے. عموماً ہم خدائی کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہیں، خدائی کریں کسی طرح سے، لیکن اصلاً ہمارا وظیفہ اور ہماری ذمہ داری بندگی ہے، خدائی نہیں ہے. اگر ہم صحیح سے بندگی کریں تو خدا کو خدائی کرنا آتی ہے، اور وہ ایسی خدائی کرتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو خدائی کرنا آتی ہے. بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو 2 ٹوک جواب دیا جناب خضر علیہ السلام نے، خبردار مجھ سے کچھ پوچھئے گا نہیں جب تک میں بتا نہ دوں. جناب موسیٰ نے فرمایا صحیح، چشم آمنا صدقنا، سر آنکھوں پر، اور یہاں تک کہ دونوں چلے. اب ظاہراً جناب یوشع ابن نون ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی. یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ آیات پڑھوں گا تو بات بہت زیادہ پھیلتی جائے گی، آیات نہیں پڑھ رہا، بس واقعے کی صورت میں آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فوراً ٹوکا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اخرقتہا، آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، لتغرق اہلہا، تاکہ ہم سب ڈوب جائیں. جناب خضر علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ غلطی ہو گئی. ایک مرحلہ اور، اب ایک بات مجھے بتائیے، جب جناب خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، کیا کشتی میں کوئی اور نہیں ہے؟ لیکن اگر روکا تو صرف جناب موسیٰ نے روکا، کسی نے نہیں روکا. اس کا معنی یہ ہے کہ صرف جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا. اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے، ممکن ہے ولی خدا ہمارے درمیان ہو، ہم نہ دیکھ رہے ہوں. ممکن ہے خدا کی حجت ہمارے درمیان ہو، ہم نہ دیکھ رہے ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہوں.
آگے بڑھے، جناب خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا، فقتلہ، نوجوان کو دیکھ کر اسے قتل کر دیا. پھر جناب موسیٰ نے بولے ارشاد فرمایا، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آپ نے بلا وجہ کسی کو مار دیا. پھر جناب خضر علیہ السلام نے ذرا سختی سے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس آخری مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ نہ پوچھئے گا، اس کے بعد پھر کوئی آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا. کہا چلیے آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے. جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کچھ مانگا کھانے کے لیے. اس زمانے میں مہمان نوازی ہنر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس زمانے میں ہر گھر میں برکت ہوا کرتی تھی. آج مہمان نوازی ختم ہو گئی تو برکتیں بھی ختم ہو گئیں. گاؤں والوں نے دینے سے منع کر دیا، کھانا دینے سے منع کر دیا. اور پھر جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے، جناب خضر علیہ السلام نے دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دیوار کو تعمیر کر رہے تھے تو اجرت ہی لے لیتے، آپ ان لوگوں کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو کھانے کو بھی نہیں دیا. پھر اس مقام پر جناب خضر علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا اور ابھی تک آپ کے لیے ترجمہ نہیں کیا تھا، یہاں کے لیے روکا تھا. آواز دی، قالا، جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. کیا مطلب؟ یہ موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان جدائی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اور وقت کے ولی کے درمیان جدائی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے ولی سے جدا ہو رہے ہیں، کہ جس کے لیے بعد میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سخت مرحلہ کیا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی مشکل کا نام نہیں لیا کہ میں قصر فرعون میں گیا، فرعونیوں میں پلا، فرعونیوں میں بڑھا، اور میں نے فرعون اور فرعونیوں کا مقابلہ کیا. بنی اسرائیل نے مجھے سختیاں دیں، اذیتیں دیں، فرعون سے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد بالآخر میں نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. کسی ایک مشکل کا بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے نام نہ لیا اور نہ ہی اشارہ کیا سوائے اس مشکل کے. آواز دی، میرے لیے سخت مرحلہ یہ تھا کہ میں اپنے وقت کے ولی سے جدا ہو گیا. اور واقعاً انسان کے لیے سخت مرحلہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے وقت کے ولی سے جدا ہو جائے، سخت مرحلہ تھا. بہرحال پھر جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں آپ کو ان باتوں کی تاویل بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. کہنے لگے، وہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ میں کشتی میں سوراخ کر رہا تھا، در حقیقت وہ کشتی کچھ مسکین بچوں کی کشتی تھی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، میں نے چاہا، قرآن مجید کی تعبیر ہے، میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار بنا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام، کہ میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار بنا دوں. وکانا وراءہ ملک، آگے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا کام یہ تھا کہ جو بھی کشتی جاتی تھی اس کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا. میں نے چاہا کہ بادشاہ ان مسکین بچوں کی کشتی کو اپنے اختیار میں نہ لے، تو لہٰذا میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا. توجہ فرمائیے گا، جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ چھوٹی مشکل میں گرفتار کر کے بڑی مشکل سے بچا لیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ ولی خدا کبھی ہمارے امور میں عیب داخل کر کے ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال کر بڑی بڑی مشکلات سے نجات دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک بچے کو قتل، نوجوان کو قتل کر دیا تھا. کہنے لگے، اس نوجوان کے ماں باپ صالح تھے، نیک تھے. یہ نوجوان بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے طغیانی کا باعث بنتا. میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں تاکہ پروردگار اس سے بہتر انہیں دے. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَ رَبُّهُمَا، میں نے چاہا کہ پروردگار اس سے بہتر انہیں دے. اور پھر روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نے اس نوجوان کے بدلے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عنایت کی، اس بیٹی سے نبی نہیں انبیاء آئے. इसका माना यह है कि अगर परवरदिगार हमसे कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है, लेकिन हमें खुदा का लेना याद रहता है, देना याद नहीं रहता। और कहने लगे, वो जो आपने तीसरे मरहले पर देखा था कि मैंने दीवार तामीर की थी, उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि दीवार को तामीर कर दूं ताकि वो ख़ज़ाना महफूज हो जाए, क्योंकि इन दोनों का बाप सालेह था, इन दोनों का बाप नेक था। आपने देखा, नेकी बाप ने की थी, सिला औलाद को मिल रहा है, और ऐसा ही होता है। और उसके बाद जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये थी इन सारी बातों की तावील जिस पर आप सब्र न कर सके। एक इस पर एक छोटी सी बात कहूँ और अपने मौजू को तमाम कर दूँ। आप मुझे बताइए, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम जो काम कर रहे थे वो क्या काम था? एक नेक काम था, एक अच्छा काम था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस बात से जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को रोका वो क्या काम था? नेक काम था। ये रोकना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी या नहीं? जिम्मेदारी थी। वाकयन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो रोक रहे थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी शरीयत के पासदार हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी शरीयत के मुहाफिज़ हैं, और जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम बातिन के मुहाफिज़ हैं। जनाब मूसा की जिम्मेदारी थी कि ज़ाहिर को बचाएँ, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को बातिनी उमूर की जिम्मेदारी दी गई थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छे कामों की वजह से जनाब खिज़्र को छोड़ा। तवज्जो फरमाइएगा, एक तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने बुरे कामों की वजह से नहीं बल्कि अच्छे कामों की वजह से जनाब खिज़्र को छोड़ा। यह बात वाजे नहीं होगी, एक तरफ इशारा करूं ताकि बात मजीद वाजे हो जाए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जनाब तिरिम्मा से मुलाकात हुई। तिरिम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तिरिम्मा से कहा, तिरिम्मा चलो मेरे साथ। तिरिम्मा ने कहा, मौला आप कूफे न जाइए, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। फिर मशवरा, मौला कूफे न जाइए, हालात अच्छे नहीं हैं। इमाम ने फरमाया, तिरिम्मा हमें जाना है, खुदा ने जो चाहा वो हो जाएगा। तिरिम्मा ने कहा, मौला मेरे साथ यमन चलिए, क्योंकि तिरिम्मा यमन के अतराफ़ के रहने वाले हैं, मैं आपके साथ कुछ शमशीर जन कर दूंगा, आप उनको लेकर चले जाइएगा। इमाम ने फरमाया, नहीं तिरिम्मा, जो खुदा चाह रहा है वही होगा, चलना है तो चलो। तिरिम्मा कहने लगे, मौला मेरे पास कुछ अनाज है, कुछ नफाका है, मैं तिजारत करके आ रहा हूँ, ये नफाका अपने घर वालों को पहुँचा दूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। इमाम ने फरमाया, ठीक है तिरिम्मा। और तिरिम्मा ने जो कहा था वो सच था। तिरिम्मा वाकयन दिल से इमाम से मोहब्बत करते थे। तिरिम्मा का मसला उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी वाला मसला नहीं था कि जब इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जोफी के पास गए और जाकर कहा, उबैदुल्लाह चलो मेरे साथ, तो उबैदुल्लाह ने कहा, नहीं मौला मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ काम है। तो इमाम ने कहा, उबैदुल्लाह जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारे सारे गुनाह मैं माफ़ करा दूंगा, जो चाहोगे वो होगा, मेरे साथ चलो। फिर उबैदुल्लाह ने पलट कर कहा, मौला मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, एक काम कीजिए, मेरा घोड़ा ले जाइए। इस घोड़े की खसूसियत यह है कि अगर कोई इसका पीछा करना चाहे तो कोई इसका पीछा नहीं कर सकता, और यह घोड़ा किसी को छोड़ता नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला पढ़ा, जो जुमला कुरान मजीद की एक आयत थी, और वो आयत पढ़ने के बाद इमाम ने उबैदुल्लाह का वाक़या ख़त्म कर दिया। वो आयत क्या थी? आवाज़ थी, मा कुन तो मुत्तखिदल मुज़िल्लीन अतदा, ए उबैदुल्लाह हम गुमराह लोगों को अपना ज़ोरे बाज़ू नहीं बनाते, हम गुमराह लोगों को अपना ज़ोरे बाज़ू नहीं बनाते। ये कहने के बाद इमाम ने उबैदुल्लाह का काम ख़त्म कर दिया। ख़त्म हो गई उबैदुल्लाह के बाद, जन्नत दोज़ख़ का फ़ैसला हो चुका उसकी ज़िंदगी में। लेकिन तिरिम्मा ऐसा नहीं था। तिरिम्मा से इमाम ने कहा, चलो तिरिम्मा। तिरिम्मा ने कहा, मौला अभी जाता हूँ, अनाज पहुँचा के वापस आ रहा हूँ। तिरिम्मा गए, अपने घर में अनाज रखा, नफाका रखा। तिरिम्मा की ज़ौजा रोकती रही, मगर तिरिम्मा ने कहा कि मेरे मौला ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। तिरिम्मा ने ज़ौजा को खुदा हाफिज़ किया। फिर उसी मकाम पर आए कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए क्या देखा, नाकबंदगी हो चुकी है, लोग खड़े हैं, तिरिम्मा को जाने से रोक दिया गया। तिरिम्मा ने कहा कि मुझे जाना है अपने मौला की मदद करनी है। कहा, कौन से मौला? तिरिम्मा ने कहा, मेरे मौला हुसैन तन्हा है, उनकी मदद करनी है। कहने वाले ने कहा, तिरिम्मा जिस हुसैन की मदद करने जा रहे थे उस हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका है। आप मुझे बताइए क्या हुआ? एक छोटी सी गलती से तेरे माँ कितनी बड़ी सादत से महरूम हो गए। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, ये सारा मुकदमा उस जुमले के लिए आप हजरात के सामने बांधा था। आप मुझे बताइए तेरे माँ क्या करने जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान हराम राबतों की वजह से मासूम की हमराही से महरूम हो जाता है, वो तो हो ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान मकरूह राबते की वजह से इमाम से दूर हो जाता है, कुछ हद तक तो दूर हो ही जाता है। मैं जो कह रहा हूं उस पर तवज्जो फरमाइएगा। तेरे माँ क्या करने जा रहे थे? नाऊज़ बिल्ला, कोई हराम करने काम करने गए थे? जी नहीं। कोई मकरूह काम करने गए थे? जी नहीं। तेरे माँ या एक वाजिब काम करने गए थे या एक मुस्तहब काम करने गए थे, क्योंकि घर वालों को नफका पहुंचाना या वाजिब है या मुस्तहब। लेकिन तिरम्मा ये भूल गए थे, वाजिब उस वक्त वाजिब होगा जब वली खुदा कहेगा। अगर वाजिब भी वली खुदा के मुकाबिल पर आ जाए तो वाजिब वाजिब नहीं होता, मुस्तहब मुस्तहब नहीं होता। ये जिसे कहेंगे वो वाजिब होगा, ये जिसे कहेंगे वो मुस्तहब होगा, ये जो कहेंगे वही वाजिब होगा। और तेरी माँ एक छोटी सी गफलत से हमेशा की सआदत से महरूम हो गए, एक अबदी सआदत से। आप मुझे बताइए कौन सी चीज दरमियान में रुकावट बन रही थी? हराम राबेता नहीं, मकरूह राबेता नहीं, बस वो राबेता जिसे मैं अच्छा समझ रहा था। यानी मेरे कहने से कोई राबेता अच्छा नहीं होगा, वो जिसे अच्छा कहेंगे वो अच्छा होगा, मेरे कहने से कुछ भी अच्छा नहीं हो जाएगा। इस बात को मजीद वाज़े करूं, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जमाने में लोगों ने अमीरुल लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम को तन्हा छोड़ दिया, कोई मैदान में नहीं आया सिवाय जनाब जहरा के। ना ये कि जनाब जहरा ने अमीरुल मोमिनीन की हमराही की बल्कि अमीरुल मोमिनीन की मुहाफ़ज़त की। उस जमाने में एक मसला के जिस मसले की वजह से लोगों ने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को तन्हा छोड़ा वो यही मुकद्दस राबता था। वो क्या मुकद्दस राबता था? एक हदीस जाल की गई, एक हदीस गढ़ी गई, आवाज थी इन्ना नुबुव्वता वल इमामता ला यजतमियाने फी बैतिन वाहिद, नुबुव्वत और इमामत एक घर में जमा नहीं हो सकते। बस लोगों ने एक हदीस के नाम पर अहले बैत को तन्हा करना शुरू कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि अमीरुल मोमिनीन के पास आते, अपने वक्त के वली के पास आते और आकर पूछते मौला ये हदीस सही है या नहीं, बजाय कि इमाम से आकर पूछते, इमाम को तन्हा करना शुरू कर दिया। एक मुकद्दस राबता, एक मुकद्दस राबते की वजह से जमाने का वली तन्हा रह गया। अगर तवज्जो फरमाइएगा, अगर जमाने का वली तन्हा ना होता, अगर उस जमाने में अमीरुल मोमिनीन तन्हा ना होते तो यकीन मानिए आज उम्मत इस्लामिया में कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और रिवायात से बयान कर रहा हूं कि अगर उस जमाने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कत्ल तन्हा ना छोड़ते और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तन्हा ना छोड़ देते तो नतीजे में आज जितनी भी बुराइयां और जितनी भी मुश्किलात हमें उम्मत इस्लामिया में नजर आ रही हैं हमें नजर नहीं आती। एक जुमला कह रहा हूं उस पर वजाहत नहीं कर पाऊंगा, उस जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में नहीं सकीफा में शहीद किया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद नहीं हुए, सकीफा में शहीद हुए हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर पहुंची हैं तो एक जुमला फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, मेरे भाई तुम्हें पीर के दिन कत्ल किया गया, पीर के दिन कत्ल किया गया। जबकि उलमा ने कहा आशूर पीर के दिन नहीं था, यह तो कतअन साबित है कि आशूर पीर के दिन नहीं था, फिर क्यों जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया मेरे भाई तुम्हें पीर के दिन कत्ल किया गया? फिर जब उलमा ने हिसाब लगाया तो समझ में आया सकीफा पीर के दिन था, सोमवार दोशंबा। और जनाब जनाब यही कहना चाह रही है मेरे भाई तुम्हें करबला में नहीं सकीफा में कत्ल किया गया है। अगर उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम को तन्हा ना छोड़ते तो बाद में कोई मुश्किल दरपेश ना होती। लेकिन वक्त का वली तन्हा हो गया, किसी ने जनाब जहरा का साथ नहीं दिया और फिर उसके बाद ये मुश्किलात, आज जितनी भी मुश्किलात हैं मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। कुछ दूर और आगे आइए, जंग सिफीन 18 महीने ये जंग चली है, 18 महीने कुछ कम नहीं, 18 महीने। यहां तक कि जनाब मालिक अरसल ने अपने आप को आमादा किया, कहा मौला अभी जाकर जंग जीत कराऊंगा। मालिक अश्तर कुछ कम हैं? अगर मालिक अश्तर की सारी फजीलतें तारीख से मिटा दी जाएं, बस एक जुमला लिख दिया जाए तो मालिक अश्तर के लिए काफ़ी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने मालिक अश्तर की वफात के बाद फरमाया, मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसा था जैसा मैं पैगंबर के लिए था। क्या थे मालिक अश्तर? नबी थे, इमाम थे, मासूम थे। क्या थे? हमारी ही तरह के एक इंसान थे, लेकिन अपने आप को विलाए अली में ऐसा डुबो दिया। मौलाना साहब हमें अहले बैत से ना मिलाइए, फिर किससे मिलाएं? यजीद से मिलाएं? क्या कोई हमारे पास दूसरा रास्ता है? या अहले बैत का रास्ता है या इनका रास्ता है, दरमियान में कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। या इनसे मिलाएंगे, अगर इनसे नहीं मिलना तो इनसे मिलाएंगे, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इतना आगे कर दिया विलाए अली में कि विलाए अली में डूब गए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जबान से अपनी फजीलत में जुमला कहलवा लिया। ये कमाल था जनाब मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम का। मालिक अश्तर ने कहा, मौला मैं भी जाता हूँ, जंग जीत कर आऊँगा। मालिक अश्तर ने अपने आप को आमादा किया और सफ़ों को चीरते हुए हाकिम शाम के खैमे के पास गए। इतना करीब पहुंचे कि घोड़ा एक छलांग मारेगा और हाकिम शाम का सफाया। आपको मालूम है हाकिम शाम उस वक्त का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना। अगर उसकी मिसाल आज के ज़माने में ले, हाकिम शाम उस वक्त का अमेरिका या इसराइल, और मालिक अश्तर हाकिम शाम के बिल्कुल नज़दीक हैं। घोड़ा एक छलांग मारेगा, हाकिम शाम का सफाया हो जाएगा। ऐसे मौके पर क्या हुआ? कुरान मजीद नैज़ों पर बुलंद किया गया और वो लोग जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ थे, वही लोग अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आएगा, या अली मालिक अश्तर को वापस बुलाइए वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। कौन थे ये चाहने वाले थे? तो या अली मालिक अश्तर को वापस बुलाइए वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फौरन पैगाम भिजवाया कि मालिक अगर मेरी ज़िंदगी चाहिए तो वापस आओ। ऐसे हाल में कि जब मालिक अश्तर हाकिम शाम के खैमे के करीब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक, ऐसे मरहले पर मालिक अश्तर को हुक्म मिला है कि मालिक अली ने बुलाया है। आप बताइए अगर मैं और आप होते तो क्या करते? खुद आप लोग बताइए, आप लोगों के दरमियान फौजी जवान यहां मौजूद हैं, वो बताइए अगर आप अपने टारगेट के नज़दीक हो तो क्या होगा और पीछे से हुक्म आ जाए कि आपको वापस आना है, हम कहेंगे बस अभी मार के आते हैं और मार के ही पलटेंगे। मैं तो कम अज़ कम ऐसा ही करूँगा। लेकिन तारीख ने लिखा जैसे ही मालिक अश्तर को हुक्म मिला वैसे ही वापस। क्यों? यानी जो जुमला कहना चाह रहा हूं, यानी मालिक अश्तर के जहन में ख्याल भी नहीं आया कि हाकिम शाम को मार के जाना है। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिला सोचा भी नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, मालिक अश्तर ने सोचा भी नहीं और वैसे ही वापस। इसका मतलब यह है कि अली के चाहने वालों की सोचों पर भी अली हाकिम होता है। और मालिक अश्तर वैसे ही वापस। क्यों? मालिक अश्तर को मालूम है मैं अगरचे नेक काम करने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरे मौला ने बुला लिया है, नेक काम उस वक्त नेक होगा जब अली कहेंगे। और वो काम जिसे मैं नेक समझ रहा हूँ और अली कह रहे हैं नेक नहीं है, तो वो काम नेक नहीं है। मालिक अश्तर वापस। फिर क्या हुआ? कुरान मजीद को नैदों पर उठा लिया गया। बस एक जुमले की वजाहत कर रहा हूँ और यहीं पर बात तमाम करूँगा जो हमारा मौजू था तकरीबन। कुरान मजीद नैदों पर उठाया गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद, ये कुरान का वजूद कतबी है, मैं हूँ कुरान, मैं कह रहा हूँ कि लड़ो। अच्छा मौला, आप कह रहे हैं लड़ो, लड़ने का नतीजा आपको मालूम है क्या है? लड़ने का नतीजा यह है कि वो कुरान मजीद जो नैज़ों पर उठे हैं, कुरान ज़मीन पर गिरेगा। मौला नाऊज़ु बिल्लाह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद ज़मीन पर गिरा दो? क्या लाजिमा ये नहीं था कि कुरान मजीद ज़मीन पर गिरेगा? जी हाँ, कुरान मजीद ज़मीन पर गिरता। लेकिन अमीरुल मोमिनीन नवाज देंगे, अगर मेरे मुकाबिल पर कुरान की दो दस्तियाँ भी आ जाएँ तो वो कुरान नहीं है। कुरान वो है जो मेरे पास है, मैं हूँ हकीकत कुरान, मैं हूं तो वो कुरान है, मैं नहीं तो कुरान नहीं है। इस जुमले की वजाहत करूं, किसी भी चीज के चार वजूद होते हैं, क्योंकि जहन मुशव्विश हो जाएगा कि इतना सख्त जुमला मैंने कैसे कह दिया, इसलिए इस जुमले की वजाहत कर रहा हूं। किसी भी चीज के चार वजूद होते हैं, वजूद लफ्जी फॉर्मल लॉजिक में मंतिक सूरी में यह चीज बयान की गई है, वजूद लफ्जी, वजूद कतबी, वजूद जहनी, वजूद हकीकी। एक सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वजूद कतबी, वजूद लफ्जी, वजूद जहनी, वजूद हकीकी। मसलन मैंने लिखा पानी, तवज्जुहात यहाँ रखिएगा, मैंने लिखा पानी, तो ये पानी का वजूद कतबी है जो लिख दिया गया, पे अलिफ नून, ये पानी ये वजूद कतबी है। मैंने बोला पानी, तो मेरे बोलने से एक तलफ़ वाज़ हुआ पानी, ये पानी का वजूद लफ्ज़ी है। मैंने सोचा पानी, ये पानी का वजूद ज़हनी है। लेकिन मुझे बताइए, अगर मुझे प्यास लगे तो कौन सा पानी है जो मेरी प्यास बुझाएगा? वजूद कतबी प्यास बुझाएगा, वजूद लफ्ज़ी प्यास बुझाएगा, वजूद ज़हनी प्यास बुझाएगा? अगर मैं कहूँ पानी, आप लिख कर दे दीजिए पानी, प्यास बुझ जाएगी? जी नहीं। मैं कहूँ पानी पानी पानी, प्यास बुझ जाएगी? जी नहीं। मैं सोच लूँ पानी, प्यास बुझ जाएगी? जी नहीं। जब तक पानी पीऊँगा नहीं, प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी का वजूद हकीकी वही है जो पानी है। तवज्जो फरमाइएगा, अगर वो वजूद हकीकी ना होता तो ना वजूद लफ्जी होता, ना वजूद ज़हनी होता, ना वजूद कतबी होता। ये जो कुरान मजीद हमारे सामने है, जो लिखा हुआ है, ये कुरान का वजूद कतबी है, ये कुरान का वजूद कतबी है जो लिखा हुआ है। मैंने तिलावत करना शुरू किया, ये कुरान का वजूद लफ्जी है जो तिलावत हो रहा है। मैंने हिफ्ज कर लिया, कुरान मजीद मेरे जहन में आ गया, ये कुरान का वजूद जहनी है। कुरान का वजूद हकीकी कहां है? वो वजूद हकीकी जिसकी वजह से वजूद लफ्जी भी है, वजूद कतबी भी है, वजूद जहनी भी है। हम बताते हैं कुरान का वजूद हकीकी है, मीम है, मीम दाल, चाहे एक हो या पांच हो या बारह हो या चौदह हो। समझ में आया इमाम क्यों फरमा रहे थे जाओ जाके लड़ो? ये जो नैज़ों पर बुलंद किया है, ये कुरान का वजूद कतबी है। मैं हूं वजूद हकीकी, मेरी वजह से है कुरान, मेरी वजह से है हकीकत कुरान। और अगर कहीं पर शिफा होगी तो वजूद कतबी से नहीं होगी। अगर कुरान असर दिखाएगा तो वजूद लफ्जी से नहीं दिखाएगा, वजूद ज़हनी से नहीं दिखाएगा। जितना राबिता वजूद हकीकी से करीब होगा, कुरान अपना असर दिखाएगा। आप देखें हदीस में आया, इस जुमले की वजाहत नहीं कर पाऊंगा, बस बात तमाम करूंगा। हदीस में आया कि अगर मुर्दे पर कुछ मरतबा, ज़ाहिरन 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ दी जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जिंदा होता है मुर्दा? नहीं होता। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि जिंदों पर पढ़ दिया जाए तो जिंदा मुर्दा हो जाता है। हमारे ज़बान की तासीर तो बरअक्स है। हो क्यों रहा है? क्या नऊज़ु बिल्लाह हदीस गलत कह रही है? जी नहीं, हदीस गलत नहीं कह रही, चूंकि इस ज़बान का राबिता हकीकत कुरान से नहीं है। जितना ज़्यादा राबिता हकीकत कुरान से बढ़ता जाएगा, कुरान की एक एक आयत अपना असर दिखाती जाएगी। आप देखें कितने हाफिजान कुरान हैं, हाफिजान कुरान से कितनी तब्दीली आ रही है? कोई तब्दीली नहीं आ रही। क्यों? क्या कुरान का सिर्फ वजूद ज़हनी है, वजूद हकीकी नहीं है? वजूद हकीकी की मिसाल से बात वादे करूं, हजरत आयतुल्ला शेख मुर्तज़ा अंसारी, बहुत बड़ा नाम शेख मुर्तज़ा अंसारी कि जिनके बारे में आज मौजूद है ये बात कि आज के जितने भी मराजे हैं सब शेख मुर्तज़ा अंसारी के शागिर्द हैं। जब तक कोई आयतुल्ला शेख मुर्तज़ा अंसारी को पढ़ ना ले, मर्जा नहीं बन सकता। एक आंख से कुछ भी नज़र नहीं आता, एक आंख से कम नज़र आता है, और उसके बाद जब दर्स कहते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि इनके दर्स पर एतराज़ करे। अभी ये बात चल रही थी, एक जगह बता रहा था कि दर्स खारिज होता है हौज़े में। दर्स खारिज जब इंसान तालिब इल्म इब्तदाई मराहिल पास कर लेता है तो दर्स खारिज में पहुँचता है। दर्स खारिज में जो कुछ पढ़ चुका है उसका इंतबाक करता है, इम्प्लीमेंट करता है उसे, इंतबाक करता है उसे, और उसी में जो बन गया वो मुजतहिद बन गया। यहीं पर मुजतहिद बना करते हैं, और उमूमन जो नीचे बैठते हैं वो मुजतहिद होते हैं या मुजतहिद की सतह के होते हैं, और मर्जा वक्त दर्स देता है। जब मर्ज़े वक्त दर्स देता है तो नीचे से तालिब इल्म एतराज़ के लिए हाथ उठाते हैं, और अगर किसी ने मर्ज़े वक्त पर एतराज़ कर दिया इसका मतलब यह है कि उसका इल्मी मरहला बहुत बुलंद है, बहुत बाला है, इल्मी सतह बाला है, क्योंकि किसी भी मर्ज़ा पर एतराज़ करना आसान नहीं है। एतराज़ कर रहा है यानी उसका इल्मी मरहला बहुत आगे है, इल्मी पहुँच बहुत दूर तक है। मसलन अगर कोई डॉक्टर आपको दवा लिख कर दे तो हम नहीं कह सकते ये दवा क्यों लिखी है, क्यों? इसलिए कि हमने पढ़ाई नहीं है, हमने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर होगा वो कह सकता है आपने दवा गलत लिखी है, वो बताएगा दवा गलत लिखी है कि जिसका इल्मी मरहला इसके साथ हो, जिससे कुछ कम हो। इसी तरह से दर्द खारिज में होता है, एतराज़ वो करता है जो एतराज़ कर सकता हो। एक तालिब इल्म शेख मुर्तज़ा अंसारी के दर्स में आकर बैठा करता है और खामोशी से बैठा रहता है, ना कुछ बोलता है ना उसे कुछ समझ में आती है बेचारे को, और सबको मालूम है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। एक मरतबा वो तालिब इल्म दर्स में आगे आकर बैठा, और फिर जब तालिब इल्मों के दरमियान या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान इस तरह के मसाइल पेश आए तो क्या होता है, मजाक का मौका मिल जाए तो फिर देखिए क्या होता है। फिर सब ने वहाँ भी यही किया, लगता है कुछ समझ में आ गया, और उसने फिर आगे बैठकर एतराज़ किया। शेख ने जब दर्स देना शुरू किया एतराज़ के लिए हाथ उठाया, शेख ने एतराज़ का जवाब दिया। सब हैरान कि इतना इल्मी एतराज़, वो भी शेख के ऊपर, बहुत हैरान हुए। फिर उसने दोबारा एतराज़ किया, शेख ने दोबारा जवाब दिया, फिर एतराज़ किया, शेख ने दोबारा जवाब दिया। ना जाने कितनी मर्तबा एक दर्स में उसने एतराज़ कर दिया। मैंने बताया एक एतराज़ भी जवान मर्दी की बात है, उसने एक नहीं कई एतराज़ कर दिए शेख मुर्तज़ा अंसारी के ऊपर। शेख जवाब देते रहे, यहाँ तक कि कहने लगे बाद में मुझसे मिलना। एक मर्तबा ये तालिब इल्म हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में जा रहा था, शेख मुर्तज़ा अंसारी बाहर आ रहे थे, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। फिर शेख ने उसके कान में कहा, सुनो, जिसने तुम्हारे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ा था उसने मेरे दोनों कानों में वलज़ालीन तक पढ़ा था। हुआ क्या था, ये तालिब इल्म बेचारा ऐसे कुछ समझ में आता नहीं था, मेहनत करता था मगर मेहनत का सिला नहीं लेता था। इसने सोचा कि अब मैं नजफ़ छोड़ दूँ, जब कुछ समझ में आता ही नहीं है तो नजफ़ में रहने का फ़ायदा क्या है। उस वक्त बहुत इल्मिया नजफ़ में हुआ करता था। नजफ़ छोड़ने लगा तो दरे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर गया और जाकर एक जुमला कहा, मौला आया तो था दरे इल्म से इल्म लेने के लिए, लेकिन यहाँ से खाली जा रहा हूँ। ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ दी, इस तालिब इल्म के कान में बिस्मिल्लाह पढ़ दी। एक बिस्मिल्लाह का असर इतना हुआ कि इस काबिल हो गया कि शेख पर एतराज़ करने लगा, जिसका शेख ने जवाब दिया कि मेरे दोनों कानों में अमीरुल मोमिनीन ने वलज़ालीन तक पढ़ा है। अब समझ में आया, अगर कुरान की आयत हकीकत कुरानी की ज़बान से निकल जाए तो असर दिखाती है। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल अगर कोई मुकद्दस शय भी हमारे और वक्त के वली के दरमियान रुकावट बनी हुई है तो हम वक्त के वली से बहुत दूर हैं। यही मुकद्दस शय हमें वक्त के वली से दूर कर देगी, यही मुकद्दस शय वक्त के वली से दूर कर देगी। उस ज़माने में भी ऐसा ही हुआ, मुकद्दसात बना लिए थे अपने मुकद्दसात की वजह से लोग अहले बैत से दूर हो रहे थे, मुकद्दसात की वजह से लोग अहले बैत से दूर हो रहे थे, और दुश्मन भी मुकद्दसात ही की वजह से लोगों को धोखा देता था। एक अजीब जुमला कह रहा हूँ, दुश्मन भी मुकद्दसात की वजह से लोगों को धोखा देता था। कैसे? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में या पैगंबर के बाद दुश्मन तीन तरह से काम करता था, और अजीब बात यह है, अगर वो जुमला याद हो, अजीब बात यह है कि आज भी तीन ही तरीके से काम करता है। प्रोपागंडा, सबसे पहले प्रोपागंडा होता था, उसके बाद डराया जाता था, उसके बाद ख़रीदा जाता था, और फिर उसके बाद जब कोई प्रोपागंडे में ना आए, जब कोई डरने में ना आए, जब कोई ख़रीदा ना जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही था, प्रोपागंडा, सख्त तरीन प्रोपागंडा। मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह लानत की जाती थी, और लोगों को ये यकीन करा दिया गया था कि अगर तुमने हर नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर नऊज़ु बिल्लाह लानत नहीं की तो तुम्हारी नमाज बातिल है। जिस तरह से लोग हमारे पास आकर मसअले शरी पूछते हैं, इस तरह से एक शख्स नमाज जुमा के बाद इमाम जुमा के पास गया, जाकर पूछने लगा कि मुझे एक मसला शरी है, का पूछिए मसला शरी क्या है। तो उसने पूछा कि मैं नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर लानत करना भूल गया हूं, मुझे बताइए मेरी नमाज सही है या बातिल। जिस जमाने में प्रोपागंडे का आलम यह हो, उसके बाद डराया जाता था अगर तुमने अली का साथ दिया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारा माल लूट लेंगे, डराया जाता था, तीसरे मरहले पर खरीदा जाता था, आवाम प्रोपागंडे में आ जाती थी, जो कुछ हद तक खवास होते थे वो डरने में आ जाते थे और जो खासुल खास होते थे उन्हें खरीदा जाता था। आज भी ये तीनों ही काम हो रहे हैं, आज प्रोपागंडा भी हो रहा है, आज डराया भी जा रहा है, आज खरीदा भी जा रहा है, और ऐसे खरीदा जा रहा है कि खरीद खरीद कर लंदन की पूरी तशय्यो बना दी, पूरी तशय्यो बन गई, खरीद खरीद का तशय्यो बना दी गई। क्यों? इसलिए कि अब इस तरह से काम करना है, प्रोपागंडा किया जाएगा अहले बैत के जाने वालों के खिलाफ। प्रोपागंडे में नहीं आएंगे तो खरीदा जाएगा, डराया जाएगा, डरने में नहीं आएंगे तो खरीदा जाएगा। खरीद खरीद कर आज क्या हालत बना दी गई, यहां तक कि आज हमारे ही दरमियान इसी लिबास में कुछ अफराद को खरीदा गया, इसी लिबास में कुछ अफराद को आमादा किया गया और कहा गया कि तशय्यो के खिलाफ मवाद बयान किया जाए, और वो कर रहे हैं तशय्यो के खिलाफ। हो क्या रहा है? क्या खरीदा जा रहा है? प्रोपागंडा, तहदीद और तत्मी, तबलीग, तहदीद, तत्मी, ये तीन मरहले थे अहले बैत के जमाने में, तीनों ही काम हो रहे थे। प्रोपागंडा भी हो रहा था, डराया भी जा रहा था। इतना सख्त तरीन मरहला, जब पैगंबर के बाद ऐलान कर दिया गया कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और अगर किसी ने अली की बैत की तो उसका घर ताराज कर दिया जाएगा, फिर क्या होना था? डरने के बाद लोग पीछे हट गए, लेकिन हाँ, अगर किसी ने परवाह नहीं की तो वो एक थी, कौन? फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। फातिमतुज़्ज़हरा पसलियाँ टूट गईं मगर घर में नहीं बैठी, रुखसार नीले हो गए मगर घर में नहीं बैठी। अली आप पर निसार हो जाऊं, अली आप पर फिदा हो जाऊं, और फातिमा ने अली को बचा लिया। बचा तो लिया लेकिन बड़ी कीमत दी, बड़ी कीमत दी। यहाँ तक के फातिमा जहरा घुट घुट कर इस दुनिया से चली गई। हमारे एक उस्ताद कहते थे, बात बिल्कुल सही थी, कि समझ में नहीं आता कि जब हम जनाब जहरा की मुसीबत पढ़ते हैं, ये मुसीबत जनाब जहरा की मुसीबत थी या अमीरुल मोमिनीन की मुसीबत थी। क्या अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, सबर तो वफिल ऐन कदा वफिल हल्क शजा, मैंने ऐसे सब्र किया जैसे किसी की आँख में कांटा चुभा हो, मैंने ऐसे सब्र किया जैसे किसी के हल्क में हड्डी फंसी हो। कितनी तकलीफ होती है जब आँख में कांटा चला जाए, कितनी तकलीफ होती है जब हल्क में हड्डी फंस जाए। हाँ, तकलीफ होनी भी चाहिए थी, सोचिए जिसके सामने जिसकी ज़ौजा को मारा जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा को मारा जा रहा था, मगर हाय सब्र ने हाथ बांधे हुए थे, फातिमा मुझे माफ़ कर देना। पैगंबर की वसीयत थी, मेरी ज़ौजा मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ हाँ, अज़ीज़ाने गिरामी, आपको मालूम है सारे इमामों में सबसे ज़्यादा मज़लूम शख्सियत अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत है। आपको मालूम है मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बाज़ ऐसी मुसीबतें हैं, कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर आईं, वो मुसीबत किसी दूसरे इमाम ने नहीं देखी। हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कुछ मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में वो मुसीबतें देखी। एक मुसीबत का तस्करा कर रहा हूँ, आपको मालूम है वो कौन सी मुसीबत थी? कि जब ना अब्बास रहे ना अली अकबर रहे, ना कासिम रहे। और हुसैन को हुक्म मिला, हुसैन जंग तमाम कर दो। हुसैन इब्न अली ने नियाम में तलवार रख ली। जब जालिमों ने देखा कि अब हुसैन लड़ेंगे नहीं, चारों तरफ से घेर लिया गया हुसैन को, कोई पत्थर मारता था, कोई नैजा मारता था, कोई तलवार से हमला करता था, चारों तरफ से हमले हो रहे थे और आवाजें आ रही थी, इससे खैबर का बदला भी ले लो, इससे ओहद का बदला भी ले लो, इससे खंदक का बदला भी ले लो, इससे इसके बाप का बदला भी ले लो, इससे मोहम्मद का बदला भी ले लो। और उसके बाद हुसैन पुश्ते फरस पर झूल रहे थे, एक मर्तबा जहरा का जाया, घोड़े से जमीन पर आया और अब इतना जलाल है कि कोई इमाम के करीब नहीं जा पा रहा। कोई कहता है कि इमाम शहीद हो गए, कोई कहता है नहीं, हुसैन जिंदा हैं। यहां तक के कहने वाले ने कहा अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा हैं या हुसैन शहीद हो गए। ये कहने के बाद शिमर ने आवाज दी, आग उठा लो और जला दो खियामे हुसैनी को, आग उठा लो और जला दो खयामे हुसैनी को। अजीजाने गिरामी, वो हुसैन जो भी अपने लबों को हरकत भी नहीं दे पा रहे थे, जैसे ही ये आवाज आई अपनी जगह से उठे, खबरदार जब तक मैं जिंदा हूं जैनब की तरफ ना देखना, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे घर को आग ना जला ना लगाना। लेकिन हाय अमीरुल मोमिनीन, हाय अली इब्न अबी तालिब, दरवाजा जलता रहा, मोमिन शहीद हो गए, जहरा का मुंह सूज गया, कलाइयां सूज गई, लेकिन हाय कब्र में हाथ बांधे हुए हैं, मेरी बीबी मुझे माफ कर देना। और उसके बाद यहां तक के जहरा कुछ हद तक अमीरुल मोमिनीन के साथ रही और कुछ दिनों के बाद जहरा भी अमीरुल मोमिनीन को छोड़ के चली गई। कल यहीं तक पढ़ा था, जनाजा तैयार हुआ, गरीबों की तरह जहरा का जनाजा उठा, एक वीराने में जनाजा लेकर आए। अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं कैसे दफनाओ, कौन है सैयदा का महरम, बच्चे बहुत छोटे हैं। एक गोशे से आवाज आई, अली सैयदा को इधर ले आओ। अब जो गए जाकर क्या देखा, कब्र आमादा है तो हाथ निकले, अली मेरी बेटी को मुझे दे दो। अली ने सैयदा को पैगंबर के हाथ में रख दिया। मैं कहूंगा या अली, बड़ा सख्त था, तन्हा थे, अकेले थे, मगर जब सैयदा को दफन किया हाथों में हथकड़ियां तो नहीं थी, गले में तौक तो नहीं था, पांव में बेड़ियां तो नहीं थी, लेकिन हाय सैयद सज्जाद जिंदा ने सामने खड़े हैं। अजब नहीं नजब का रुख किया, बाबा जब दादा जब दादी को दफन किया था हाथों में हथकड़ियां तो नहीं थी, कैसे दफन करूं, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तौक है। दोबारा कब्र से हाथ बरामद हुए, सैयद सज्जाद मेरी बेटी को मुझे दे दो। अमीरुल मोमिनीन ने जनाबे जहरा को लहद के हवाले कर दिया, पैगंबर के हवाले कर दिया। उसके बाद अजीब जुमले कहे, कहने लगे पैगंबर की अमानत पैगंबर तक पलटा दी गई है। कहने लगे ए पैगंबर अकरम, सैयदा से पूछिएगा कि आपकी उम्मत ने आपकी बेटी के साथ क्या किया। और कहने लगे ए नबी खुदा, सैयदा से बहुत ज्यादा पूछिएगा, या अली आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। अली आवाज देंगे ए नबी खुदा, जब तक सैयदा से पूछेंगे नहीं ये बताएगी नहीं, आपकी बेटी अपने जख्म किसी को नहीं बताती, इससे पूछिएगा आपकी उम्मत ने क्या किया। कहने लगे पैगंबर की अमानत पैगंबर तक दे दी। आपको मालूम है ये जुमला क्यों कह रहे हैं। एक मर्तबा पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, जनाबे सैयदा को बुलाया, जनाबे सैयदा का हाथ पैगंबर के हाथ में दिया, कहने लगे या अली हाज़ी वदीअतुल्लाह, ऐ अली ये सैयदा अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के रसूल की अमानत है, फाहफज़हा, ऐ अली सैयदा की हिफाजत करना। इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, अमानत के शराइत में से ये है, जैसी अमानत ली जाए ऐसी ही वापस की जाए। अमानत दे तो दी, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं ऐ नबी खुदा माफ कर दिएगा, जब अमानत को लिया था तो सालिम थी, जब सैयदा को वापस कर रहा हूं रुखसार नीले پسلیاں ٹوٹی ہیں، سیدہ سے پوچھئے گا یہ خود بتائے گی آپ کی امت نے کیا کیا۔ والیا وا فاطمہ۔